ولله المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. یہ آیت کب اتری تھی؟ جب صحابہ کرام ایک دفعہ کسی سفر میں تھے تو ایسی جگہ پہ اترے کہ رات اندھیری تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے. تو لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ جس جس نے جس طرف اس کو سمجھ آئی اس نے اس در نماز پڑھ لی اور ایک لائن کھینچ لی. صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ کسی نے کسی طرف پڑھ لی، کسی نے کسی طرف، کسی کی غلط، اس کی غلط ہو گئی، اس کی غلط ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تو مشرق اور مغرب میں، یعنی جدھر کو بھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر کو بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اگر ایسی آپ کسی جگہ فرض نماز کے لیے تو لازم ہے، کیونکہ آگے آ جائے گا جب سیکنڈ پارا شروع ہوگا، تو فرض نماز کے لیے لازم کر دیا گیا کہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے. مگر نفل نماز کے لیے اگر قبلہ رخ منہ کر کے شروع کر دی ہے اور اس کے بعد کسی طرف کو بھی رخ ہو جاتا ہے، یعنی نفل نماز میں ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر پڑھتے تھے مثلا، آپ بھی گاڑی میں مثلا جا رہے ہیں، آپ نے قبلہ رخ کر کے شروع کر دی، اس کے بعد گاڑی کہیں مڑتی رہی ہے، اب آپ کا منہ کہیں اور ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ اسی طرح ہوتے تھے اور جس طرح بھی ہوتا تھا آپ نماز پڑھ لیتے تھے. اگر پھر بھی آپ کو نفل نماز کے اندر یعنی مسٹ نہیں ہے، کر لیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اب اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس طرح فرض نماز میں بھی آپ آج کل تو بہت سہولیات ہیں، کمپس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ نے کہیں غلطی کر دی، نہیں تھا آپ کے پاس کمپس بھی، نہیں اندازہ ہوا، تو نماز ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہی اللہ ہے. مگر ایک بات اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے جنہوں نے سنا ہوا یہ بات، وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ بہت ہی گمراہ کن عقیدہ ہے. اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز کے اندر ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے، اس میں اللہ، اس میں اللہ، مکان میں اللہ، پھول میں اللہ، پتے میں اللہ، درخت میں اللہ، آسمان. یہ کفر ہے، کفر. تو یہ اس آیت سے وہ لیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے اللہ المشرق والمغرب، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں. اسی لیے حدیث اتنی ضروری ہے نا بات کو سمجھنے کے لیے، ورنہ تو لوگ اپنے من مانے مانے بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اپنے عرش پہ مستوی ہے. ہاں، اپنی علم، قدرت، اپنی تمام صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اس کی ایک صفت ہے وسعت ہے اس کے اندر، اور اس کی تمام صفات میں وسعت ہے، اور علیم ہے، جاننے والا ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا، اور ان کا یہ حال ہے، وہ اللہ جس کی یہ شان ہے، اس اللہ کے لیے بیٹا ٹھہراتے ہیں یا اولاد ٹھہراتے ہیں. ولدا میں اولاد ہی آ گئی، کیونکہ یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصرانی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے باوجود وہ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت ہے، وہ واسع علیم ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے تو وہ سب کچھ ہے، یعنی وہ مالک ہے سب کچھ کا، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور کل لہو قانتون، ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. دیکھیں، جب اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، تو پھر کوئی چیز اسے باہر تو ہے نہیں. کوئی بھی چیز یا آسمانوں میں ہوگی یا زمین میں ہوگی، وہ ان کا مالک ہے. مالک کسی چیز کا کوئی اگر ہوتا ہے تو وہ چیز اس کا بیٹا یا بیٹی تو نہیں بن جاتی، وہ مالک ہے. مثلا آپ کہیں کہ ہم مالک ہیں اس گھر کے، ہم مالک ہیں اس گاڑی میں، تو وہ کیا آپ کا بیٹا بیٹی بن جائے گی؟ نہیں. وہ اللہ کی تو یہ کریشن ہے، مخلوق ہے، مخلوق تو اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ اللہ کی اولاد ہے؟ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنی بری بات ہے جو یہ زبان سے نکالتے ہیں، کہ اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. हम तो बड़ा आराम से कह देते हैं, तो क्या हो गया, ये तो इतने नेक काम करते हैं, ये तो जन्नत में इनको जाना चाहिए, और उनके शिर्क का हमें कुछ नहीं होता, तो क्या हो गया, शिर्क ही सिर्फ करते हैं। पता है शिर्क कितनी बड़ी चीज है? मिसाल के तौर पे ऐसे उसके साथ मिसाल मैच तो नहीं करती, लेकिन जस्ट मिसाल किसी किसी आदमी से कहा जाए कि उसकी तेरी बीवी किसी और की भी बीवी है, कोई और भी उसको अपनी बीवी कर दे, उस आदमी को कितनी गैरत आएगी। आप समझ लें कि इस तरह अल्लाह के लिए औलाद ठहराना उसके लिए गैरत की बात है। और हदीसे कुदसी में आता है, बुखारी में है ये, कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे इब्ने आदम झुठलाता है, उसको ये लायक नहीं कि वो मुझे झुठलाए, वो मुझे गालियां देता है, उसको ये लायक नहीं कि वो मुझे गाली दे। और उसका गालियां देना क्या है, उसका झुठलाना तो क्या है कि मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे, तो अल्लाह इस पे कादिर नहीं, ये अल्लाह को झुटलाना है। और उसका गाली देना क्या है कि फरमाया वो मेरी औलाद बताता है, हालांकि मैं पाक हूं और मेरी ना औलाद है और ना बीवी है, और अल्लाह इससे बुलंद है, सुबहाना, वो पाक है इन चीजों से, इसलिए को औलाद की तो तुम्हें तमन्ना हो सकती है, अल्लाह को नहीं है। औलाद तुम्हें चाहिए कि तुम्हें जो होता है कि मेरा नाम लेने वाला कोई हो, हालांकि अब तो औलाद भी नाम नहीं लेती, वालदैन का मर जाते हैं तो औलाद भी भूल जाती है। तो ये तो इंसानों की कमजोरियां, या इंसान कहते हैं कि हम बुढ़ापे में हमारा क्या बनेगा, अल्लाह ताला तो बुढ़ापे से पाक है, मौत से पाक है, फिर तुम कैसे उसकी औलाद ठहराते हो। और इतनी प्यारी ये हदीस है ना बुखारी और मुस्लिम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुरी बातें सुन के सब्र में अल्लाह से ज्यादा कोई भड़के नहीं है, कि लोग उसकी औलाद ठहराते हैं और वो उनको रिस्क देता है और आफियत देता है। सुभान अल्लाह, देखें हमें को बुरी बात कह दे ना, कोई गाली दे दे, कोई बुरी बातें हमें कह दे, ये तो एक्सट्रीम बुरी बात है। शिर्क जो है ना, इससे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, सबसे टॉप का सबसे बड़ा कभी गुनाह, इतना बुरा कि अल्लाह को गाली देने के बराबर ये शिर्क है। सोचे हमें कोई थोड़ा बुरा कहता है ना, थोड़ा सा भी बुरा कह दिया, क्या हमारी कोई शान में गुस्ताखी कर दी किसी ने, कोई हमें कुछ कह दिया, कुछ पता चल गया, तो हम सारी जिंदगी उसे बात नहीं करना चाहते, हमें वो इतना बुरा लगता है कि बस हम उसे बदले लेने पे उतर आते हैं, और हम उसको किस किस तरह से उसको सुनाते हैं फिर। और सुभान अल्लाह, फिर सोचा करें जब आपको पता चले ना कि मेरे बारे में किसी ने ऐसा कहा है और आपको बुरा लगे, फिर सोचा करें कि वो रब कितना सबर वाला है, कि वो देख रहा है, सुन रहा है, जानता है, वो देखता है ये बुतों के आगे सजदा कर रहे हैं, वो देखता है मैं इनको खिलाता हूं और ये क्या कर रहे हैं, मैं इनको पिलाता हूं और ये किधर जा जाके मान रहे हैं मन्नतें, और किधर दुआएं करते हैं, और किधर माथे टेकते हैं, और किन के आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, वो सब देखता है, जानता है, सुनता है, इसके बावजूद वो उनको रिस्क भी देता है, आफियत में भी रखा, उनको औलाद देता है, उनको आफियत देता है, उनको सेहत देता है, उनको दौलत देता है, उनको खाना पीना देता है, रिस्क के सामान उनके लिए करता है, आसमान गिर नहीं जाता उनपे, जमीन फट नहीं जाती उनके लिए, वरना अल्लाह चाहे तो एक कलमा एक कुंद से वो मिट जाए, लेकिन देखो अल्लाह का सबर, वो जो हर चीज पर कादिर है, हमें तो कुदरत भी नहीं होती, फिर भी हम जितनी भी हमारे पास पावर होती है उसको ही हम बस कितना यूज करते, वो तो हर चीज पे कुदरत रखता है, तब भी नहीं ऐसा करता, वो हम किस तरह बदले लेते हैं, हम क्या हाल करते हैं किसी का जब हमें पता चल जाए कि इसने हमें कुछ कहा है। अल्लाह से ज्यादा वाकई बुरी बातें सुन के सब्र करने वाला कोई नहीं, अल्लाह तू कामिल है, अल्लाह तेरी जात वाकई तारीफ के काबिल है, हमें देख लो क्या चीज है हम, वो मुहावरा ना पिद्दी और बिद्दी का शोरबा, वो हम क्या चीज है, और हमारी भूं फां देखें क्या है, वो हमारी अकड़े देखे क्या है, फिर हमें कोई कुछ कह के तो देखे। जब आप कभी सुने कि मेरे बारे में कोई एक बुरी बात होता है, तो ये हदीस याद कर लीजिएगा, अल्लाह तू कितना सबर वाला है, मुझे कितना सबर करना चाहिए, तो सब ताकत रख के सबर करता है, मैं तो वैसे ही कमजोर। बदी उस समय वाती वल अर्द, बदी है वो, कोई चीज पहले से कोई एग्जाम्पल, कोई नमूना, कोई पहले से कोई चीज इजाद नहीं हुई भी थी जिसको देख के उसने आसमानों जमीन बना लिए, कुछ भी नहीं था, वो तो इनिशिएटर था, ओरिजिनेटर था, अदम से वो वजूद में लेकर आया, कोई इनका सैंपल नहीं था, वो बनाने वाला आसमानों जमीन को, वाइजा कदवा अमरन فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ। उसकी तो कुदरत इतनी है, उसको क्या औलाद चाहिए, वो तो कुन कहता तो चीज हो जाती है। उसको किसी के सहारे नहीं चाहिए, उसको बेटे नहीं चाहिए कि उसके बाजू बने। वो तो कुन कलमा कहता है और चीज हो जाती है। उसने फरिश्तों को कलमा कुन से पैदा कर दिया, रूहों को कलमा कुन से पैदा फरमा दिया, हो जा और वो हो जाती है। وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية। ये मुशरिकीन मक्का कहते थे, पहले आप ये देखें कि हमसे अल्लाह ताला खुद पहले बात करे ना। ला यालमूना किसको कहा गया? मुशरिकीन मक्का को। इसलिए इनके पास कोई किताब नहीं थी, इनके पास कोई सहीफा नहीं आया था, ये ला इल्म थे। तो इसका मतलब जिसके पास कोई किताब का नॉलेज ना हो ना अल्लाह के नजदीक, वो कौन है? ला इल्म है। ठीक है, इनको मुशरिकी ने मक्का नहीं कहा गया, मक्का वाले या काफिर। पीछे भी क्या कहा गया? काललदीना ला यालमून। ला यालमून क्यों कह रहे हैं? वो तो कहते थे हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं है। अब दूसरों को कहते थे कि ये लोग तो क्या हैं, अजमी हैं। हम वो हैं कि हम तो अहले जुबान हैं, हमारी शायरी देखो, हमारा ये देखो, तो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे इल्मी मैदान में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला यालमून। उस जमाने की तो शायरी थी ना, जैसे आज की साइंस है, तो उस जमाने का बहुत बड़ा जो नॉलेज था ना वो शायरी था, उसमें तो वो बहुत आगे थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है ला यालम, यानी किताब का इल्म नहीं होता जब, तो वो ला यालमून ही है। हम भी आज तक अल्लाह के नजदीक क्या थे जब तक हमारे पास किताब का इल्म नहीं था? जाहिल। ठीक है, अल्लाह के यहाँ इल्म वाला वही है जो उसकी किताब का इल्म रखता है। ला यालमूना वो कहते क्या थे? लाउला युकल्लिमुना अल्लाह, हमसे क्यों नहीं अल्लाह बात करता? आपसे जो बात कर रहा है तो हमें अल्लाह बताए पहले कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तब हम आपको मानेंगे। आओ तीना आया, या हमारे पास कोई निशानी लेकर आए, जैसे ईसा अलैहि सलाम पे उतरी थी, मूसा अलैहि सलाम पे उतरी थी। कदालिका काल अल्लादीना मिन कबलिहिम मिथला कौलिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसी ही बातें ना पिछले लोग भी करते रहे, वो भी अपने पैगंबरों को यही कहते थे, हमें कोई निशानी दिखाएं, हमें अल्लाह सामने दिखाएं। हमने पढ़ा है ना कि हमें अल्लाह दिखाएं तो फिर हम मानेंगे। मूसा आपको तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल आपस में मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते मतलब क्या? मेंटेलिटी, सोच, नजरियात, हालांकि डिफरेंट जमानों के लोग हैं, लेकिन देखें एक ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिल मिलते जुलते हैं। जब दिल एक जैसे हों तो फिर बातें भी एक जैसी ही होती हैं, अमल भी एक जैसे होते हैं, चाहे वो किसी जमाने के लोग हों। हम कहते तो बहुत हैं हम बहुत एडवांस जमाने के, 21st सेंचुरी के, और वो तो पुराने जमानों के लोग, लेकिन आज भी वही बातें होती हैं जो उस जमाने में लोग किया करते थे। आज भी जिनके दिल उनके जैसे हैं वो उन्हीं जैसी बातें करते हैं। ठीक है, तो जमाने गुजर गए, सेंचुरीज गुजर गई, लोग आए चले गए, और ये फिर भी उन जैसी बातें कर रहे हैं। वो आके इनको बता के तो नहीं गए, मगर क्या बात है, क्योंकि दिल जब फासिकों जैसे हों, काफरों जैसे हों, तो बातें भी वही करेंगे। तो दिलों की बात है, इसका मतलब दिल सही करने की जरूरत होती है। कद बैयन्ना लायाति लिकौमी यूकिनून, तहकीक बयान तो कर दी हमने आयतें उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। तुम आयतें मांगते हो, तुम कहते हो कोई निशानी लेकर आओ, आयात तो आ गई है, और वो कौन सी आयात है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा जो था वो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं था कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, या लाठी जो है वो सांप बन गई, या यदे बैदा, या ये नहीं थे मौजजे। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजजे क्यों नहीं दिए गए? इसलिए कि अगर ऐसा मौजजा दिया जाता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ ही खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा मौजजा दिया गया जो रहती दुनिया तक कायम रहे, क्योंकि आपकी रिसालत कयामत तक के लिए। तो मौजजा तो कोई होना चाहिए ना जो कयामत तक के लिए चले, और वो है कुरान। आज इसको टेस्ट कर ले, कोई उठा ले, कोई ये कह नहीं सकता इसमें ये वाली बात गलत है। कई बातें लोगों को आज पता चल गई, कई बातें इसके राज हैं जो अभी तक नहीं पता चले। तो वो अब अल्लाह ताला हर एक से कलाम नहीं करता कि हर एक बंदे के साथ अल्लाह कलाम करे और उसको बताए कि हाँ भाई ये सच है। और ना ही अल्लाह ताला ने आपको निशानी और उतारनी है, ना ही कोई और मौजजा आएगा, ये मौजजा काफी है। लेकिन ये किसके लिए? उनके लिए जो यकीन रखते हो, जिसको यकीन ही ना हो। देखिए, अगर आप यकीन नहीं है तो आप दवाई भी खाएंगे ना, नहीं इससे नहीं मुझे कोई फायदा होगा, नहीं ये नहीं काम करेगी, तो वो वाकई नहीं करेगी। यकीन के साथ जो देखेगा तो इन्हीं आयात के अंदर उसको निशानियां नजर आएंगी कि ये मौजजा है, एक एक आयत मौजजा है, अल्लाह की निशानी है। इन्ना अरसलना का बिल हक बशीर व नदीरा, ए नबी हमने तो आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला। ये आयत इसलिए आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी ये बातें सुनते थे ना कि कैसी कैसी ये बातें करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, और इतनी हिर्स थी उनको कि ये ईमान ले आए, तो ए नबी आप नहीं इस चीज के ऊपर इतना गम करें। आपको अल्लाह ने किस लिए भेजा है कि आप इनको हक के साथ भेजा है। हक का माना यहाँ पे ये भी हो सकता है कुरान, ये भी हो सकता है दीन इस्लाम, ये दे के भेजा है ताकि आप लोगों को बस पैगाम दे दें, जो ईमान ला के सवाले अमल करें उनको खुशखबरी दे दें, जो नहीं मानते उनको डर सुना दे, ये आपका काम। वला तुसअलू अना असहाबिल जहीम, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इन्होंने क्यों नहीं माना, ये क्यों जहन्नमी बने। कोई जहन्नम में जाता है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने क्यों इसको जाने दिया, क्यों नहीं इसको आपने मनवाया, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ पैगाम दे देना है। देखें, रसूल दारोगा नहीं होते, वो जबरदस्ती लोगों को इस तरफ नहीं लाते। लोग कहते हैं ना इस्लाम तो तलवार से पहला ही है, आप तो हमारे कुरान में देख रहे हैं जो ये कहता है। ये हमारे नबी को भी ये था कि आप सिर्फ खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले, इसके अलावा किसी को भी जबरदस्ती दीन में लाना, ला इकराह फी दीन, इस दीन के अंदर किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, ये है ही नहीं हमारे दीन के, ये पॉलिसी ही नहीं है। तो उड़ाई नहीं है ये बातें, उन्होंने लोगों को तलवारें दिखा दिखा के पता नहीं उसको उनको मुसलमान कर लिया था। तो आपसे तो यानी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कोई जहन्नुम में जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। इससे एक दाई है दीन को ये समझना चाहिए कि पैगाम देना, हक पहुंचाना, ये हाँ किसी दाई दीन की जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन इससे आगे के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी खोज लगाना, उनके पीछे पड़ जाना, उनका राज अफशा करना, ये आपका काम नहीं है। आपने बता दिया, दैट्स इट, आपकी जिम्मेदारी इतनी ही थी। ठीक है, वलन तर तो अनकल यहूद वलन नसार हत्या मिल्लतहुम। अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट बता दिया गया, हरगिज नहीं आपसे राजी होंगे यहूदी और नसारा, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहां तक कि आप इनकी मिल्लत की पैरवी कर लें, आप इनके तरीकों पे आ जाएं तभी आपसे खुश होंगे। सुन लिया आपने भी कान खोल के। हम अक्सर लोगों को ये ख्वाहिश होती है या चाहत होती है कि हम किसी तरह असिमिलेट कर लें, हम इनके अंदर घुल मिल जाएं, ये हमसे खुश हो जाएं, तो वो आपसे तो नहीं खुश होंगे जब तक कि आप उनके तरीकों पे ना आ जाएं, उनके जैसा पहने, उनके जैसा खाएं पिए, उनकी तरह रहें सहें, उनके वाले अकीदे अपना लें, तब वो आपसे खुश हो सकते हैं। यानी आप अपने दीन को छोड़ दें तो तब खुश हो सकते हैं, इससे पहले नहीं खुश होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसलिए कहा गया कि ये कि यानी ये किसी तरह ये ईमान ले आए, इसके लिए कहा गया कि आपसे ये राजी नहीं होंगे, इसलिए कि इनके दिल में तो हसद है ना। अब हसद इतना ज्यादा है तो ये तो नाराज ही रहेंगे, इसी तरह आप इनको नहीं मना सकते कि ये इस्लाम ले आए, इस दीन में आ जाए, ये तो सिर्फ एक बात के ऊपर ही खुश हो सकते हैं। तो आप इनके लिए परेशान होना छोड़ दें। अरे उनको तो ये कहा गया, हमें तो दीन फैलाने का नहीं शौक होता, हमें ये होता है कि वो हमें किसी तरह एक्सेप्ट कर लें, किसी तरह एक्सेप्ट कर लें, किसी तरह ये हमसे खुश हो जाएं और हमें ऐसी नजरों से ना देखें और हमें वैसी नजरों से ना देखें और हमारे साथ बड़े अच्छे हो जाएं। तो वो तो तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप अपना दीन छोड़ के उनके जैसे बन जाए, और आप देखते हैं कि जो जैसे वैसे बन जाते हैं उनके साथ वो सही। तो क्या इंसान अपने दीन का सौदा करना चाहेगा? कुल इन हुदल्लाह ही हुवल हुदा, याद रखो हिदायत तो वही है जो अल्लाह की हिदायत है, हिदायत का रास्ता सिर्फ यही है जो अल्लाह ने रखा, ये हिदायत के ऊपर नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है। और अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमा दिया, अब जब हम पढ़ेंगे कि वमई अब तक गैर इस्लामी दीन है फनई कबल अमिन वहुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आया तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा, वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। तो जो चल पड़े इनके रास्ते के ऊपर ये सोच के कि हाँ यही सही है, तो नहीं। अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई दीन काबिले कबूल नहीं है, जब इस्लाम आ गया साफ तौर पे वहां पे बता दिया गया। वलाइन तबअता अहवाहुम, और अलबत्ता अगर आप पैरवी करेंगे इनकी ख्वाहिशात की, बाद अल्लदी जाअका मिनल इल्म, इसके बाद के आपके पास इल्म आ गया, मालक मिन अल्लाही मिन वली वला नसीर, आपका कोई फिर मददगार नहीं होगा और ना ही कोई दोस्त होगा अल्लाह के सिवा, अल्लाह से बचाने वाला, यानी मिन अल्लाह अल्लाह से बचाने वाला, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर मिन दूने लाही भी कई जगह आता है, लेकिन यहाँ पे मिन अल्लाह अल्लाह से बचाए जो आपको। तो क्या बात कही जा रही है, असल में जो आपको लग रहा है ना कि आप कहा जा रहा है ए नबी अगर आप पैरवी करें, ये कहा जा रहा है ए नबी अगर आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करें, इसके बाद के आपके पास आ गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं जाना था इनके रास्ते पर, ना इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करनी थी, फिर क्यों कहा गया? इसलिए कि जब बात कोई बहुत शदीद कहनी हो ना, तो फिर क्या कहा जाता है, बड़े को कहा जाता है, किसी बड़े को, किसी जैसे आप अपने मसलन आपने सबको रोकना है, तो आप अपने लाडले बच्चे को बुला के कहते हैं अगर तुमने ये किया ना तो देखना फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। यानी अब सबको आपने सुना दिया कि अगर इसकी ये चीज इससे नहीं बर्दाश्त होगी तो बाकी सबसे कैसे बर्दाश्त होगी, फिर बाकियों ने किया तो उनका क्या हाल होगा अगर लाडले को ये कहा जा रहा है। यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कहा जा रहा है, ये नहीं कि आपने करना था, इसलिए कहा जा रहा है कि सुन लो लोगों, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करेंगे, मैंने इतनी बड़ी हस्ती, अगर अगर जो कि उनने नहीं करना, लेकिन अगर वो भी ऐसा करें तो उनके लिए भी अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं, तो तुम्हें कौन बचाएगा अगर तुम इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करते हो? जैसे वो खुश होते हैं, इनके जैसे बन जाओ, इनके जैसे बोलो, इनके जैसे पहनो, क्रिसमस आ रही है तो वो मना लो, वैलेंटाइन आ रहा है तो वो मना लो, जैसे वो है वैसे ही हम भी बन जाए ना, उनकी नजरों में जच जाए। अल्लाह ताला ने तो आगे फरमाया क्या तुम इनके पास जाते हो इज्जतें लेने के लिए, फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए सारी की सारी, वो इज्जत देने वाला, तुम इनसे इज्जतें चाहते हो, हमें इज्जत मिल जाए, हम हमारा कोई स्टेटस हो जाए। तो देखिए इंसान या कभी खौफ खाता है ना तो तब उनकी ख्वाहिशात के पीछे कि जैसे ये है वैसे हो जाए ताकि हम सेफ हो जाए, तुम्हारा तो कोई दोस्त और मददगार ही नहीं रहेगा अल्लाह से बचाने वाला, फिर दुनिया में भी चाहोगे ना मुश्किल में फंस जाओगे कि कोई मदद के लिए आए तो कोई बचा नहीं सकेगा तुम्हें, अल्लाह की गिरफ्त से तुम्हें कौन बचाएगा, कौन अल्लाह की पकड़ से बचाएगा? तो फिर किसको वली बनाना है, किसकी ख्वाहिशात पे चलना है, किसके पीछे जाना है? हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया ना कि बस ये खुश हो जाएं, और ये खुश होते हैं इस तरह कि हम इन जैसे बन जाएं, तो उनकी ख्वाहिशात पे चले ना, उनकी ख्वाहिश तो यही है कि आप उन जैसे बन जाएं, अपना दीन छोड़ दें। अभी बताया ना वद्दा कथीरू में नाल किताब, यही तो पहली आयत पढ़ी है, उनकी चाहत क्या है, उनकी चाहत ये है कि ये दीन वीन अपना छोड़ो, छोड़ो सब कुछ ये जो तुमने शुरू किया था, ऐसे हमारे जैसे बनो, तो फिर उनकी ख्वाहिशात पे चलेंगे। मिम बादी मा मिम बा बाद अल्लदी जाया का मिनल इल्म, इसके बाद के तुम्हारे पास इल्म आ गया, कुरान आ गया, सुन्नत का इल्म आ गया, इसके बावजूद तुम उनकी ख्वाहिशात पे चलना चाहते हो, तो ये और ज्यादा भी बुरी बात है कि जब इल्म आ जाए फिर भी आपको उनके ही तरीके पसंद है, फिर भी वही रास्ता आप चुनते हैं, बहुत बड़ी वईद है। देख लें जिसको अल्लाह छोड़ दे उसका कोई ठिकाना रह जाएगा? हम कहें कोई मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को उसके वालदैन कहें कि मैं इसको छोड़ रही हूं, बाहर डाल आई सड़क के ऊपर, अब मेरा इसके साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, उसके लिए कितना बड़ा रंज होगा। अल्लाह का कोई बंदा जो जानता है अल्लाह की जात को, वो ये सुन ले कि अल्लाह कह रहा है मैंने इसको फिर छोड़ दिया, फिर अल्लाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना उसका अल्लाह से बचाने वाला कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार होगा, यानी अल्लाह ताला ने उससे मुंह मोड़ लिया। तो सोचें कि उसके लिए कितनी ये बड़ी आफत की बात है, सिर्फ इन लोगों को खुश करने के लिए उनकी ख्वाहिशात पे हम चलें और अल्लाह को नाराज करने। सब चीजें अगर उनकी पसंद आती हैं और उनके जैसे ही रहना और बनना चाहती हैं, अल्लाह के तरीके बैकवर्ड लगते हैं, उसके रसूल की बताई हुई बातें वो आउटडेटेड लगती हैं, सुन्नतें जो हैं वो अस्तग़फिरुल्लाह बैड मैनर्स लगती हैं, और दूसरों के तरीके लगते हैं कि ये मॉडर्न है, ये आज के मुताबिक है, तो क्या सोच है हमारी? जैसी सोच होगी फिर वैसे ही अमल होगा ना। मुतासिर किससे हैं, किससे इम्प्रेस्ड हैं हम? इम्प्रेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से या इनके तरीकों से? ये सब कुछ सबको पता है हम किससे इम्प्रेस होते हैं। जिससे इम्प्रेस है ना दिल में, जिनकी धाक दिलों में बैठी हुई है, फिर काम भी वैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं होंगे जरूर वैसे। अल्लदीना आतैना हुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती, वो लोग जिनको दी गई, दी हमने किताब, वो तिलावत करते हैं, हक्का तिलावती ही, उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। तिलावत का हक क्या है? क्योंकि आगे क्या बात आ रही है, इसलिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हक्का तिलावती ही क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाई का युमिनून अभी, वो ही लोग हैं जो इस पे ईमान भी रखते हैं। फिर जिनको किताब दी गई वो तिलावत करते हैं उस किताब की, उसका हक देते हुए, ऐसे ही लोग उसके ऊपर ईमान रखते हैं, ये मतलब है। यानी इसका मतलब है कि जो हक्का तिलावत ही नहीं करते वो उसके ऊपर ईमान का दावा है लेकिन ईमान नहीं रखते, फिर चाहे वो कहते रहे मुंह से कि हम ईमान रखते। तो हक्का तिलावत ही क्या है? हक्का तिलावत ही ये है कि तिलावत, यानी तिलावत का वैसे माना क्या है? तला यतला यतलु तिलवन, यानी फॉलो करना है। वलकमरी इदा तलाहा, चांद फॉलो करता है। तो तिलावत में पहली चीज क्या है? सही से पढ़ना। नंबर टू क्या है? उसके माने को फॉलो करना। नंबर थ्री क्या चीज है? अमल में उसको फॉलो करना। यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको हक क्या है कि जब हम पढ़ें तो सही पढ़ें, जब हम इसकी समझें तो उसको भी वक्त दें और इसको सही समझें। नंबर थ्री क्या है? इसके ऊपर फिर अमल भी करें, तब बात है हक्का तिलावती, तब आपने हक अदा किया इसकी तिलावत का। वरना तो हक ही क्या अदा किया? अब पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। कई हैं जो पढ़ना ही सही नहीं जानते, इतनी गलतियां अंदर, लेकिन परवाह नहीं है। कई हैं पढ़ना सही जान गए लेकिन माना पता ही नहीं है कि क्या है, कुरान पे कुरान खत्म हो रहे हैं। कई हैं ठीक है माना भी रट लिया उन्होंने, टेस्ट में भी फुल मार्क्स दे रहे हैं लेकिन अमल की कोई परवाह नहीं, वो ला यालमून की तरह ही है, अमल में बिल्कुल कोरे, पता ही नहीं चलता इन्होंने कुरान पढ़ा भी है या नहीं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने तिलावत का हक अदा नहीं किया। तिलावत का हक अदा करने वाला वही है जो इन तीनों बातों को सामने रखता है। वो लोग ईमान रखते हैं इसके ऊपर, इस किताब पे। अब आप सोच लें कि हम सब कहते हैं हम इस किताब के ऊपर ईमान रखते हैं, लेकिन अगर हमने हक का तिलावत ही नहीं किया तो हमारा ईमान तो नहीं है फिर, इस जुबानी दावा है सिर्फ, सिर्फ जुबानी दावा, और हम इस पे मुतमईन हैं और आज तक मुतमईन रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो कुरान पे ईमान है। आप ये बताइए कि आज मुस्लिम उम्मा में कितने लोग हैं जो हक का तिलावत ही करते हैं? जुबानी सबके दावे हैं कुरान बेहतरीन किताब, कुरान मोजा, कुरान फला, कितनी मर्जी इसकी तारीफें सुन लो, लेकिन वो तो आपके अमल से पता चलता है आप कुरान को कितनी बड़ी चीज समझते हैं, क्योंकि आपको उसकी परवाह भी नहीं। कल ही एक वीडियो देखी जिसमें इतनी अच्छी बात उन्होंने कही भी थी, देखें 16 साल पढ़ते हैं, 12-14 साल पढ़ते हैं, लेकिन इतने सालों पढ़ने में भी एक दफा भी किसी एक पारे का तर्जुमा, एक पारे की समझ हमें नहीं होती। मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, एक सिपारा भी समझ के नहीं पढ़ा होता। किसी सिलेबस में कुरान नहीं है, जो अल्लाह की किताब है वो किसी सिलेबस में नहीं है। एलिमेंट्री देख लें, हाई स्कूल देख लें, कॉलेज देख लें, कहीं नहीं है, उसमें कोरे ही रहते हैं। और दावे हमारे इतने बड़े बड़े हैं कुरान के बारे में कि कुरान ऐसा, कुरान तो हमारा ये, कुरान तो हमारा कभी नहीं बदला, वो तो अल्लाह का कलाम है। पूछ लें कितने बड़े बड़े कलाबे मिलाएंगे हम, और उसके बाद क्या है, कुरान की तरफ क्या तवज्जो है, उसको पीठ पीछे डाला। वमन यकफुर बिही फाउलाएका हुमुल खासिरून, जो ईमान नहीं रहता वो कुफर ही है ना, तो जो कुफर करेगा फाउलाएका हुमुल खासिरून, तो वो खसारा पाने वाले हैं। कहाँ ये नहीं बताया गया, इसलिए कि उनका खसारा दोनों जगहों पे है, दुनिया में भी खसारा है और आखरत में तो बहुत बड़ा खसारा है। इसलिए कि ये कुरान खड़ा होके कहेगा कि अल्लाह इसने मुझे पसे पुश्त डाल दिया था, ये कुरान कहेगा, कुरान गवाही देगा खिलाफ या हक में, आइदर वन। अगर तो इसको आगे रखा होगा, इमाम बनाया होगा, इसको फॉलो किया होगा, इमाम को फॉलो करते हैं ना, जैसे 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 कर रहा होता है वैसे ही हम पीछे पीछे करते हैं, इसी तरह अगर कुरान को फॉलो किया, जैसे जैसे ये कहता गया वैसे करते थे, तब तो ये हक में गवाही देगा, अल्लाह के आगे सिफारिश खड़ा करेगा खड़ा होके, इसकी एक सूरत होगी। लेकिन अगर इसको पीछे डाला तो ये खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा हो जाएगा। सोचें जिसके खिलाफ अल्लाह का कलाम गवाही दे रहा है, अब वो पता है जो पूरी दुनिया की हर चीज सिवाय अल्लाह की जात के, हर चीज अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, चाहे वो अर्श है, चाहे वो आसमान है, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, इंसान है, वेल मछलियां हैं, या कोई भी प्लैनेट्स हैं, कोई भी स्टार्स हैं, सब मखलूक है। एक चीज है इस कायनात में जो अल्लाह की मखलूक नहीं है, वो है कुरान, ये अल्लाह का कलाम है, उसकी मखलूक नहीं है, ये अल्लाह के वर्ड्स हैं। मखलूक सब पैरिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मखलूक को मौत है, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है। ये कलाम जब बोलेगा, ये कलाम सोचे ये कितनी बड़ी चीज है, ये जब गवाही देगा खिलाफ, तो वो बंदा कोई बचेगा? और हम दावे तो ईमान के करते हैं, उसके बाद हक्का तिलावत ही की कोई ख्याल ही नहीं। जब ये आयत हमें बता रही है कि ईमान वाला है ही वो जो हक्का तिलावत ही करता है, उसके अलावा तो ईमान वाला ही नहीं है। या बनी इसराइल अذكروا نعمتي التي انعمت عليكم, यहां पे जाके अब खत्म हो रहा है वो पोर्शन जो पूरा को पूरा बनी इसराइल के बारे में था। मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताती हूँ अगर टाइम होगा कि क्या इसमें है, कि ये जो आयत 45 थी वहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये मुकम्मल हुआ बनी इसराइल की सारी बातें, कि इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ए उम्मत मुस्लिमा तुम ऐसे ना करना। अब फिर कहा गया या बनी इसराइल अस्कुरू नियामती अल्लती अनअमतु अलैकुम, नियमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किए। क्या होना चाहिए रवैया इंसान का? वैसे बनी इसराइली नहीं, हम भी भूल गए कि हम पे अल्लाह ने नियमतों की बारिशें की नहीं है। और शुक्र गुजारी के लिए जरूरी है कि इंसान नियमतों का जिक्र करता रहे। आप ना जरा ऐसा करिए, ये अपना होमवर्क लिखें कि इस हफ्ते में आप अपने आप को चेक करेंगी कि मैं कितनी बातें नियमतों की तज़कीर की करती हूँ, नियमतों का जिक्र करती हूँ, और कितनी मेरी जुबान पे शिकायत रहती है। ये जरा आपने नोट करना, हर दिन का अलग अलग नोट करना, ठीक है? आपका होमवर्क है ये। अब ये ना हो कि होमवर्क मिल गया तो इसलिए अपनी जुबान को बहुत कंट्रोल करें, लेकिन पता चल जाता है इंसान को जब जुबान पे आने लगती है, आपने अपने आप को रोका अगर, तो तब भी लिख लें। ये अगर ये होमवर्क ना मिला होता तब तो आप बोल देती, हाय गर्मी बड़ी है, हाय ये ऐसा होता तो फिर अच्छा था, ये फलां चीज ऐसी क्यों नहीं हुई, ये फलां चीज नहीं मुझे मिली, फलां चीज ऐसी क्यों है। ये देखें, ये है नाशुक्री के कलिमात। ओ ये जो था ये इस तरह अच्छा था, ये ऐसे हो गया ना, अब नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे होता तो मजेदार था, ऐसे है ना तो ऐसे नहीं सही। ये सब नाशुक्रिया, यानी जो मेरे पास है, जो मुझे मिल गया, उसके ऊपर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, उस पे कोई अल्लाह के आगे झुकना या उसकी तारीफ या उसका शुक्र नहीं है। हाँ वैसा होता ना तो फिर ठीक, अब वो वैसा तो हुआ नहीं, तो अब कोई शुक्रगुजारी नहीं। यानी जो मिल जाना उसके ऊपर कभी नहीं आगे बोल शुक्र के अदा करना, बल्कि हमेशा जुबान पे वो ही बात रहनी जो नहीं मिली। हम अपने आप को कहते हैं ना बड़े शुक्र गुजार हैं। आप इससे नोट करिएगा कि कितनी नाशुक्रिया हमारी जिंदगी में, हालांकि हमें बेशुमार नेमतें मिली, लेकिन नाशुक्री हमसे जाती ही नहीं है। तो जरा कंपैरिजन करिएगा कि कितना मैं क्या बोलती हूँ, शुक्र गुजारी वाले कलिमात ज्यादा बोलती हूँ या नाशुक्री वाले कलिमात ज्यादा बोलती। खाना सामने आया तो उसके अंदर एक मसला है, तो कहीं चले गए तो वहां पे एक मसला है, कोई कपड़े हैं तो उनके अंदर एक मसला है, कोई बच्चों की कोई बात है तो उसके अंदर मसला। हर चीज के अंदर आप देखिएगा कि हमें हमेशा एक ये चीज रहती है कि ये ऐसे नहीं हुआ। वो जो ऐसे नहीं हुआ ना, वो उसकी कसक ज्यादा है, और जो मिल गया है उसके ऊपर कब शुक्र आएगा? फिर उसके ऊपर कभी शुक्र आएगा ही, क्योंकि मुझे तो मुकम्मल नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी। तो देखें, सिर्फ बनी इसराइल के नहीं, क्योंकि ये मैं आयत पहले समझा चुकी हूं, इसलिए एक और एंगल से आज आपको बता रही हूं। अपने लिए भी, खुदा के लिए नेमतों को कहें कि ये नेमतें हमारे ऊपर हुई हैं, अपने बच्चों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, ये देखो ये हमारे ऊपर, बार बार इसका जिक्र करते रहें। एक दफा बताना काफी, बार बार जिक्र करें कि अल्लाह ताला ने मुझे हमें क्या क्या नेमतें दी। और ये सिर्फ जुबानी नहीं होना चाहिए कि जुबान सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, लिस्ट एक बयान कर दी, नहीं है, दिल से होना चाहिए। नेमत का एहसास उसी को होता है जिसमें आजजी होती है, यकीन जाने जिसमें तकब्बुर होता है उसको कभी नहीं नेमत का एहसास होता। जिसमें आजजी होती है ना, और वो कहता है अल्लाह मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, तूने मुझे ये दे दिया इतना। अब आप क्या कहेंगे, मसला ना ये कपड़ा, ओ ये ऐसा होता तो अच्छा था, ये ना बस पड़ा इसके अंदर, ये चीज नहीं सही है। अगर आपको ये एहसास होगा ना, अल्लाह मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, तूने मुझे ये दे दिया, तो कहां से शिकायत आएगी फिर? लेकिन जिस वक्त हम कहते हैं ना ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इसका मतलब है आजी नहीं है। यानी मैं ये वाला एहसास नहीं है कि मैं इस काबिल नहीं थी, ये एहसास है मैं तो इस काबिल थी कि मुझे वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला ना मुझे। यानी आप अपने आप को कितनी बड़ी चीज समझते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो बताती हैं कि इंसान के अंदर कितने बड़ाई के एहसास हैं। बचाई अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये अता किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने। हाँ आगे बढ़ के जैसे आप देखते हैं, अल्लाह अकबर, हमसे बच्चे अच्छे हैं, आप देखते हैं ना बच्चे को, अच्छा आप एक लॉलीपॉप ही निकालेंगे, हाँ, ऐसे करके उसको ऐसे लेते हैं, वो क्या है, दैट इज ग्रेटिट्यूड, दैट इज शुक्र गुजारी। आप एक पेंसिल निकालते हैं उसको, हाँ, एक टीचर बहुत छोटी छोटी चीजें उनको दे देती है बच्चों को, वो किस तरह लेते हैं, गुडी बैग में क्या होता है, इतनी छोटी छोटी मामूली सी चीजें होती हैं, कैसे लेते हैं उसको, एक बच्चे की तरह बन जाए अल्लाह के आगे, अल्लाह तूने मुझे ये दे दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। उस पे खुश क्या होना, हमारे तो दुख ही नहीं खत्म होते कि फलां चीज नहीं मिली थी, ये तो मिल गया हाँ, लेकिन वो तो नहीं ना मिली। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ करे इन रवैयों के ऊपर। और फिर हमें जब नेमत छिनती है तब याद आता है, लेकिन फिर लेट हो गया होता है ना। क्या हम शुक्र गुजार बनने के लिए ये चाहते हैं कि हमसे नेमतें छीनी जाए तब शुक्र शुक्र करेंगे? नेमत ही अल्लती अनाम तो अलैकुम, तुम मेरी नेमत को तो याद करो जो मैंने इनाम की तुम पे। क्या इनाम की थी नेमत, इनको रोल मॉडल बनाया, इनको इमाम बनाया, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने फजीलत दी तुमको तमाम जहान वालों पे, फजीलत दे दी, जो जो चीजें इनको दी किसी और को नहीं दी। कैसे जहान वालों पे फजीलत दी, बादशाहत इनके अंदर थी, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत कभी नहीं किसी को मिली, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी खास तौर पे, वो इनमें अता फरमाई, अल्लाह ताला ने बादशाह भेजे, अंबिया भेजे, इनको वो चीजें दी जो किसी और को नहीं दी थी। वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, लेकिन ये अपने आप को क्या समझते थे, वी आर द रॉयल ब्लड, आज तक ये समझती हैं, आज तक कहते हैं कोई यहूदी नहीं बन सकता, क्योंकि यहूदियत जो है ना वो मतलब बहुत ये रॉयल है। तो याद रखो एक दिन ऐसा आने वाला है कोई किसी को डरो उस दिन से जो कोई किसी को काम नहीं आएगा, वला युकबलु मिनहा अदलुन, कोई बदला किसी से कबूल नहीं किया जाएगा, वला तनफाउहा शफाअतुन, और ना नफा देगी शफाअत। शफाअत तो होगी, आप जैसे आयतल कुर्सी में भी पढ़ते हैं, शिफात तो होगी लेकिन अल्लाह के इज़न से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिफात करेंगे अल्लाह के इज़न से, तो लेकिन कोई जान ऐसे नहीं कि अल्लाह के इज़न के बाहर किसी को छुड़ा के ले जाए। तो बात तो फिर वही हुई ना कि जब अल्लाह का इज़न ही होगा तो फिर अदरवाइज लेकर आओ कोई वली, लेकर आओ कोई नसीर, लेकर आओ कोई बदला। बदला यानी मैं इतने पैसे दे देती हूँ मुझे छोड़ दें, कोई सिफारशी बुला लेते हैं आप, या कोई मददगार, कोई युनसरून, कोई जो मदद भी नहीं ये किए जाएंगे, कोई कोई फौज नहीं आ जाएगी इनके लिए, कोई इनके गार्ड्स नहीं आ जाएंगे, कोई इनके फैंस नहीं आ जाएंगे जो इनको छुड़ा के ले जाएं, कोई नहीं ऐसा होगा। ये जो सारे दुनिया के सहारे हैं ना, कमजोर हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो मनसब और जो मकाम तुम्हें दिया उसको पहचानो और इस नबी पर ईमान ले आओ। उनके लिए तो ये है, बाकी सब के लिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। तो फिर किसी और से क्या डरना, कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता, कोई भी मेरे बदला नहीं मेरी जगह पे अपने आप को दे सकता बदले में, कोई मेरी सिफारिश नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, तो क्यों ना उससे ताल्लुक जोड़ू जो ये सब कर सकता है, और वो सिर्फ अल्लाह की जात है जो मुझे उस दिन की रसवाई से छुड़ा सकता है, बचा सकता है उस दिन के अजाबों से। तो ये यहां तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अब यहां पे खत्म हुआ बनी इसराइल का जिक्र। अब थोड़ा सा इसको मैं समराइज करना चाहती हूँ आपके सामने सिर्फ 2 मिनट में इंशाल्लाह ताला, कि आपको पता चले कि हम सूरह बकरा जब हमने शुरू की तो हमने वो 3 ग्रोहों की बात पढ़ी थी, राइट। अब उन 3 ग्रोहों के अंदर हमने देखा कि मुत्तकीन है, काफिर है और मुनाफिक है, और हमने देखा 1 से 20 तक आयात उस सिलसिले के अंदर आई जिसमें हमें बताया गया कि देखो ये 3 ही ग्रोह हैं दुनिया के अंदर, इन 3 में से अपने आप को चूज कर लो कि तुम किस में होगे। फिर हमने देखा अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने तुम्हें जमीन में क्यों भेजा, खलीफा बना के भेजा, इंसानियत, इंसान तेरा मकसद ही है कि तुझे भेजा ही गया इसलिए कि अल्लाह ताला जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता था। अब खलीफा के बाद पहली स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी आई है आदम अलैहिस्सलाम की, जो हमने तकरीबन 30 से 39 तक पढ़ा, और उसके अंदर हमने देखा कि एक यानी वो एक एक पहले खलीफा जो अल्लाह ताला ने भेजे जमीन के ऊपर वो आदम अलैहिस्सलाम थे, उनसे गलती हुई और उन्होंने अपनी गलती को कैसे फिर रेक्टिफाई किया कि तौबा की, उनका एक रवैया बताया, ठीक है। उसके बाद एक कौम का जिक्र आया। अब जाहिर है जब इंसान बढ़ेंगे, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो एक पूरी कौम चाहिए खिलाफत के लिए, तो इस कौम को इमाम बनाया। फिर पहले कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद किस कौम को इमामत का दर्जा दिया, वो थी बनी इसराइल की कौम, और उनका जिक्र हमने फिर देखा कि यहां पे आके खत्म होता है, 40 आयत से शुरू हुआ और 123 पे खत्म हुआ। हमने देखा आदम और हव्वा का किस्सा कि वो एक्सपेरिमेंटल थे, एक मॉडल थे एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, और खिलाफत का उनको दिया गया, फिर उनसे वो गलती हुई और फिर क्या उन्होंने गलती को कैसे फिक्स किया। उसके बाद हमने देखा एक नेशन जो हमें दिखाया गया, अब ये गौर से सुने, जो हमें दिखाया गया कि जो फेलियर नेशन था, फेलियर नेशन, और उसने क्या क्या गलतियां की वो सारी 40 से 20 ये 123 आयत तक हमें बताई गई। क्योंकि सूरह बकरा जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, ये हमें बताएगी कि इंसानियत की लीडरशिप, उसकी इमामत, ये खिलाफत, ये मनसब अब जो उम्मत मुस्लिमा को दिया जा रहा है तो उनको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि अब तुमने ये लीडरशिप, ये खिलाफत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ये चार्ज लेना है, और तुम इसके लिए कैसे चलोगे, क्या क्या इनको देखिए, आप किसी को कोई ओहदा देने लगते हैं तो फिर आप उसको बताते हैं ना कि भाई ये जिम्मेदारियां हैं, आपने ऐसे करना है, देखिए ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। उस सिलसिले में पहले उनको आदम अलैहिस्सलाम दिखाए गए कि जब वो आए थे उनसे गलती हो गई और फिर उन्होंने क्या किया। उसके बाद एक फेलियर नेशन दिखाया गया जिसको बताया गया कि देखो ये एक लाडली उम्मत गुजरी है जो तुमसे पहले गुजरी थी, जब इन्होंने ये काम किए तो अल्लाह उनसे ऐसा नाराज हुआ कि आज तक नाराज है, और जिल्लत और ख्वारी उनका मुकद्दर बन चुकी है, वो मग़दूब अलैहिम हो चुके हैं हमेशा के लिए। ठीक है, अब ये फेलियर नेशन बता के, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने एक रोल मॉडल दिखाया उम्मत मुस्लिमा को, कामयाब आदमी, और वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली, जो 124 से 141 तक हम देखेंगे। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फिर अब हमें करिकुलम दे दिया गया उम्मत मुस्लिमा को, आपकी गाइडलाइन, आपका मनहज, आपका रास्ता क्या होना चाहिए। अब उसके अंदर फिर आप देखेंगे सब आपको बताया जाएगा, नमाज, रोजा, हज, तलाक, रजात, रिबा, यानी शरीयत के अहकाम दे दिए जाएंगे। और एंड में हम अब इस करिकुलम को लेके कैसे चलें अल्लाह, ये तो बहुत हमारे लिए बड़ा बड़ी जिम्मेदारी है। तो 284 से 286 तक बता दिया गया कि फिर अल्लाह से कैसे दुआएं मांगो। दिस इज द समरी ऑफ द होल सूरा, कि ये आप लॉस्ट ना इसके अंदर हो जाए, इसलिए आपको बता रही हूं। पहले एक बाप दिखाया गया और उससे गलती हुई, लेकिन उसने अपनी गलती को फिक्स किया, और उसके बाद एक नेशन दिखाया गया, एक पूरी उम्मत दिखाई गई जिनसे गलती हुई, और गलतियां होती चली गई, होती चली गई, और वो बाज नहीं आए, उन्होंने इससे कोई इबरत नहीं पकड़ी। वो बाज आ जाते अगर ईमान ले आते फिर, लेकिन वो नहीं बाज आए। फिर एक कामयाब आदमी दिखाया, और फिर उम्मत मुस्लिमा को कहा कि अब आपने किसकी तरफ देख के चलना है, समझ आई बात। और अगर वो फेलियर नेशन के रास्ते के ऊपर चलोगे, उनकी खराबियां तुम अपने अंदर कर लोगे, तो उनको तो फिर माजूल कर दिया गया ना, उनको तो हटा दिया गया उनके मनसब से। तकरीबन 2000 साल तक उनको ये मनसब मिला रहा, और उन्होंने उसके बाद अल्लाह ने हटा दिया। अल्लाह के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा लाडला है कि बस उसको ही लेना, और दूसरा कोई और है जिसको कुछ किसी और तरह से ट्रीट करना, नहीं, अल्लाह का कानून सबके लिए सेम है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना। अच्छा, अगर अब एक क्वेश्चन है, अगर अब उम्मत मुस्लिमा वो ही ट्रैक अपना ले जो फेलियर नेशन का दिखाया गया है, और बताया गया, कंडेम किया गया बार बार, उनको बार बार बताया गया कि ये सही नहीं है, देखो ये कैसे बुरे थे, देखो ये कैसे इन्होंने ये उल्टे काम किए, और वो पढ़ के और समझ के फिर भी वो कहें कि हमने यही करना है और उसी के ऊपर चलते रहे, तो उसके बाद वो इनाम याफ्ता होंगे। हाँ, उसके बाद ये तो मगदूब हुए, जिल्लत और ख्वारी इनके लिए हुई, तो वो जो अब चोजन वंस हैं, जिनको अब फजीलत दी गई तमाम के ऊपर, जिनको इतनी बड़ी नेमत दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, और कुरान जो रहती दुनिया तक एक महफूज किताब, सेफ, जिसका एक एक हर्फ सेफ है और सेव्ड रहेगा, वो दी गई, तो अब वो भी वो ही फेलियर वाले काम करेंगे, तो फिर क्या उनके ऊपर इनामात की बारिश होगी, रहमतें नाजिल होंगी, या कुछ और होगा। समझ में आ रही है वजह अपनी जिल्लत और ख्वारी की। कैसे हो सकता है कि रास्ता उनका अपनाओ और पहुंचो कहीं और, कैसे हो सकता है कि बीज वो डालो जो उन्होंने डाला था और फसल कुछ और निकल आए। सोचने की बात है, सोचिएगा इस पे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनी इन आयात की।
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا